समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
किसी काबिल बनने, दुनिया को समझने और कामयाबी के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी माना जाता है, और पढ़ाई है भी जरूरी, हम सब जानते हैं। लेकिन इन सब के लिए ज्ञान किताबों से ही मिले ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो ज्ञान, जो सबक हमें जिंदगी की किताब को पढ़कर मिलता है वो कागज पर छपी किताबों से नहीं। इसकी सीधी सी मिसाल यह है कि अगर किताबों का कोई एक थैला या बल्कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही किसी गधे पर रख दी जाए तो भी वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबों के अंदर छिपे जो इल्म है उसको समझना और उसे अपनी जिंदगी में अमल में लाना पहली शर्त है। तो इसलिए जब कभी बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स से वास्ता पड़े तो उन्हें विद्वान और ज्ञानी मानने की गलती न करें। इल्म तो कबीर जैसे इंसान के पास भी था, जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी लेकिन जिनका ज्ञान आज भी किताबों का हिस्सा बने हुए हमारे ज्ञान में इजाफा करता है। पढ़ाई लिखाई की इसी अहमियत के मद्देनजर शुरू करते हैं आज का दिन कार्यक्रम आज सवेरे के साथ। साथ हूं मैं नईम अख्तर और मेरी साथी हैं सुभद्रा रामचंद्रन। कैसी है सुभद्रा?
हेलो नईम, वी आर डूइंग वेरी वेल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू हियर आवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। So be around friends and enjoy this Friday's session. So start with Naeem, we have some news headlines.
जी, सबसे पहले हम चुनावों की बात करते हैं क्योंकि आजकल वही सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज पहली बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रूप से कन्नौज, कानपुर और लखनऊ में राजनीतिक रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और बहराइच जिलों में रैलियों में हिस्सा लेंगे, जबकि भाजपा नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय के नामांकन में भाग लेंगे। बाद में वो सीतापुर और श्रावस्ती में रैलियों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज प्रदेश में रहेंगे और अमेठी और प्रयागराज जिलों में प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ आज कई दिग्गज नेता अपना पर्चा भरेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से पार्टी उम्मीदवार अजय राय आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री और चंदौली से भाजपा उम्मीदवार डॉ महेंद्र नाथ पांडे भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय और बलिया से नीरज शेखर भी अपना नामांकन आज ही दाखिल करेंगे।
Withdrawal of candidature for the sixth phase of the Lok Sabha polls ended yesterday. A total of 58 parliamentary constituencies in 6 states and 2 union territories will go to poll in this phase on the 25th of this month.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कलाकार डॉ वैजयंती माला बाली और तेलुगु फिल्म अभिनेता कोनीडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एशिया में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अश्विन बालचंद मेहता और अनुभवी राजनीतिक नेता ओ राजगोपाल को भी तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। आध्यात्मवाद के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए तोगदान रिनपोचे को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। खिलाड़ी जोशना चिनप्पा, कृषि के क्षेत्र में के चेल्लाम्मल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सोमदत्त बट्टू और मूर्तिकार ए वेलु आनंदचारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
इन अ डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू, फाइव ऑफ द इंडियन सेलर्स ऑन बोर्ड एन इजरायली लिंक्ड वेसल सीज्ड बाय तेहरान वर रिलीज्ड एंड हैव डिपार्टेड फ्रॉम ईरान। द इंडियन एम्बेसी, व्हाइल शेयरिंग डिटेल्स ऑफ देयर रिलीज यस्टरडे, थैंक्स द ईरानियन अथॉरिटीज फॉर देयर क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द एम्बेसी एंड इंडियन कंसुलेट। The Israel-linked cargo ships were seized by Iran on April 13 with 17 Indian nationals on board. The Minister of External Affairs had also said that one of the 17 Indian crew members has safely returned to India and others are safe, adding that they will be released once their contractual obligations are accomplished. The Iranian ambassador to India, Iraj Ilahi, has also said that the Indian nationals, crew members of MSC Aries, are not detained and that they are free to go.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम अयोध्या जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद ये उनकी पहली अयोध्या यात्रा है। एक दिन के प्रवास के दौरान वो श्री रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर और कुबेर टीला जाएंगे। वो सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हाल ही में 1 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या गई थी और उन्होंने वहां राम मंदिर में पूजा अर्चना की थी।
The Defense Research and Development Organization, DRDO, has announced that one of its labs has achieved success in developing liquid ramjet fuel for an advanced air-breathing engine. This fuel has been tested successfully at Ramjet Test Bed, a Defense Research and Development Laboratory, DRDL, on Wednesday. BPCL and Mineral Oil Corporation are industry partners in this development.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भाजपा एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहती है जो समृद्ध हो और ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक नेताओं की करनी और कथनी में अंतर के कारण उनके प्रति विश्वास का संकट पैदा हो गया है। लखनऊ से मौजूदा सांसद ने कहा कि भारत में रामराज्य तब शुरू होगा जब लोगों के भीतर जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि संघ ने कभी हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश बनाने के लिए राजनीति करती है। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के मुफ्त गैस सिलेंडर, आवास, नल का जल आदि विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने दावा किया है कि रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहे देश से आतंकवाद का सफाया हो गया है।
And friends, heat wave conditions are likely to prevail in Rajasthan today. The Indian Meteorological Department has forecast hot and humid weather in Gujarat till Sunday. IMD has further said that rainfall along with thunderstorm and lightning is likely to prevail in West Bengal, Sikkim, Bihar, Odisha and Jharkhand today, will continue till the next 2 days. Heavy rainfall is also likely over northeast India. IMD says thunderstorm, lightning and gusty winds are likely to prevail over Uttar Pradesh, Rajasthan, Chandigarh, Haryana, Vidarbha, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh for the next few days. Heavy rainfall is very likely in southern India till the next 2 to 3 days. Meanwhile, Delhi is likely to witness partly cloudy sky with the possibility of drizzle towards night. Minimum maximum temperatures are likely to hover around 27 and 40 degrees Celsius respectively.
शिवकाशी के एक पटाखा फैक्ट्री में कल हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इस विस्फोट में 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। विस्फोट के कारण जमा मलबा हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि लापता लोगों की तलाश की जा सके। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अधिकारियों को बचाव अभियान तेज करने को कहा है। उन्होंने घायलों के उचित उपचार करने के भी निर्देश दिए हैं। लीज की इस फैक्ट्री को चलाने वाले मालिक और एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब कुछ खबर है हमारे पास खेलों से। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। प्रतियोगिता में कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 60 रनों से हरा दिया।
Olympic and world javelin throw champion Neeraj Chopra will start the season of the Doha Diamond League 2024, scheduled at the Qatar Sports Club tomorrow. Asian Games silver medalist Kishore Jena will also be making his Diamond League debut. The two Indian athletes, both of whom have already secured Paris 2024 Olympic quotas, were last seen in action at the 2023 Asian Games in Guangzhou.
और अब सुभद्रा बात करते हैं प्रमुख महानगरों यानी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी कुछ खास खबरों को जानने की। तो आपसे शुरुआत करते हैं।
या स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन इंक्रीज इन द स्टेट फ्रॉम द 3rd ऑफ दिस मंथ। द चेंजेस कवर 15 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एन अडॉप्शन डीड द स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम ₹100 टू ₹1000। द रेट्स हैव बीन रिवाइज्ड आफ्टर 20 इयर्स। द एनुअल रेवेन्यू ड्यूरिंग 2023-24 वाज अराउंड ₹19,000 crores, of which nearly 4/5 come through the levy of stamp duty. The election commissioners instructed the district electoral officers to coordinate with the electricity and public works departments to ensure an uninterrupted power supply for CCTV cameras and counting centres. Chief Electoral Officer Satya Brata Sahu chaired a virtual meeting of DEOs and other senior officials yesterday. He asked the DEOs to ensure availability of diesel generators with automatic changeover provision in case of power failure, UPS backup for CCTV cameras in strong rooms to ensure seamless switching and stabilizer for CCTV installation. Surge protector and lightning arrestor are also to be ensured for the strong rooms. Getting to Bengaluru now, Karnataka Revenue Minister Krishna Bayar Gowda has informed that 3,000 rupees compensation will be paid initially to each of the 16 lakh farmers for the loss of their livelihood due to drought. Addressing media persons in Bengaluru yesterday, he said that a sum of 480 crore rupees is needed for this. He further added that the government had already paid the full compensation to over 32 lakh drought-hit farmers before the union government released 3,454 crore rupees to the state from NDRF. The second installment for 1.5 lakh farmers is pending due to some software issues. Once this is resolved, they will receive the compensation amount. The minister informed that a plan is on the anvil to prevent loss of life due to lightning. He pointed out that 70 to 75 people die due to lightning strikes every year in the state. The minister said that awareness will be created among people to safeguard against lightning. The government will also map vulnerable areas prone to lightning and take suitable steps to prevent deaths. Hyderabad News now. In Telangana, over 1,70,000 employees on poll duty have cast their votes at voter facilitation centres. Chief Electoral Officer Vikas Raj informed that the process of voting by postal ballot has almost completed for most categories who are eligible to vote by postal ballots, except service personnel. Over 2,64,000 employees on poll duties have applied for postal ballot and election duty certificate. While over 2,29,000 employees opted for postal ballot, nearly 35,000 employees opted for EDC. The CEO informed that the process of casting their vote through postal ballot is in advanced stage and over 1,75,000 employees cast their vote till last Monday and the process will continue till this evening. Meanwhile, a woman of 108 years of age from KCR Colony in Nizamabad cast her vote at home for Lok Sabha elections. Anayim, over to you now for rest of the news.
Ji, main Delhi se pehle shuruaat karti hoon. दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि राजधानी में वायु और धूल प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एक विज्ञप्ति में निगम ने कहा कि सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल प्रदूषण के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। समर्पित निर्माण अपशिष्ट संग्रह स्थल स्थापित किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। निगम ने बताया कि सभी क्षेत्रों में 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 225 वाटर स्प्रिंकलर्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर सफाई और पानी का छिड़काव तेज कर दिया गया है। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए शाहदरा क्षेत्र और नजफगढ़ क्षेत्र में 8 एमसीडी पार्किंग स्थलों पर इंटरलॉकिंग पैव ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। धूल प्रदूषण से निपटने के लिए कच्ची सड़कों टूटी सड़कों और गड्ढों का रखरखाव तथा मरम्मत की जा रही है। साथ ही विभिन्न सड़कों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी लगाई गई है। निगम ने कहा है कि अप्रैल 2023 से इस साल फरवरी तक 1,22,000 से अधिक पेड़ और 3,00,000 से अधिक झाड़ियां लगाई गई जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिली। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने 25 वरिष्ठ चालक दल के सदस्यों को बहाल कर दिया है जिन्हें उड़ानें रद्द होने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। चालक दल के सदस्यों ने हड़ताल वापस ले ली जिसके बाद एयरलाइंस उनके मुद्दों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई। चालक दल के सदस्यों द्वारा बिना सूचना छुट्टी पर जाने के कारण लगभग 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कल भी 85 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। प्रभावित यात्री पूरा किराया वापस ले सकते हैं या बाद की तिथि के लिए यात्रा कार्यक्रम तय कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि दिल्ली स्थित संस्थान के कैफेटेरिया में सभी काउंटरों पर स्मार्ट कार्ड यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आदि सहित भुगतान केवल डिजिटल तरीके से स्वीकार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य लेन देन को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ संस्थान के आधुनिकीकरण और सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप कैशलेस वातावरण को बढ़ावा देना है। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि 100% डिजिटल भुगतान कर्मचारियों, आगंतुकों और हितधारकों के लिए पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मुंबई से कुछ खबरें हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया कि अगर वो सत्ता में आए तो उत्तरी मुंबई को एक बेहतर स्थान में बदल देंगे। अपने मुंबई उत्तर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका देश उनका परिवार है। उन्होंने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर आलोचना की और दावा किया कि उनकी राजनीति परिवारवादी और विभाजनकारी रणनीति की है। राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने अवैध बाजार में 15 करोड़ रुपए की कोकीन ले जा रहे डीआरआई नागरिक को गिरफ्तार किया है। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने सोमवार को सीएसएमआई हवाई अड्डे मुंबई पर ड्रग्स ले जाने के संदेह में एक डीआरआई नागरिक को रोका। लगातार पूछताछ के आधार पर यात्री ने भारत में तस्करी के लिए ड्रग्स युक्त कैप्सूल खाने और उसे अपने शरीर में ले जाने की बात स्वीकार की। यात्री को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अदालत के आदेश के अनुसार उसे मुंबई के सर जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोकीन बताया जाने वाला पदार्थ एनडीपीसी अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत 8 मई 2024 को जब्त किया गया था। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। मॉनसून की तैयारियों के तहत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने गुरुवार को अपने रनवे की मरम्मत और रखरखाव का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उनका प्रयास है कि मुंबई की बारिश पर ध्यान देने के साथ परिचालन दक्षता और यात्री सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए विभिन्न प्री मॉनसून उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें जल जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान और निरीक्षण, दोनों मशीनों द्वारा रनवे की स्वास्थ्य जांच और सतही दरारें, टूट फूट और बनावट संबंधी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए मैनुअल अवलोकन शामिल है। और एक खबर कोलकाता से। कोलकाता और आसपास के जिलों में पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है। मौसम कार्यालय ने रविवार तक आंधी के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। लंबे समय तक गर्म मौसम के बाद शहरवासियों को ठंडे तापमान का अनुभव हो रहा है। गर्मी की लहर की स्थिति के दौरान शहर और उपनगरों में एयर कंडीशनर की खरीदारी भी बढ़ गई है। और अब मौसम की बात कर लेते हैं सुभद्रा। पहले दिल्ली के मौसम की बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री के बीच बना हुआ है। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस एंड अ मैक्सिमम ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस।
और आज 10 मई को इतिहास में क्या क्या खास घटना है उसकी भी जानकारी हम अपने श्रोताओं को दे देते हैं। शुरुआत करते हैं 1857 से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन शुरू हुआ था।
ओके, एंड बिफोर दैट इन 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ बाबर एंड द लोदी एम्पायर व्हिच टुक प्लेस ऑन 21 अप्रैल 1526 इन नॉर्थ इंडिया। दिस वाज वन ऑफ द अर्लिएस्ट बैटल्स इन्वॉल्विंग गन पाउडर फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। 1872, Victoria Woodhull becomes the first woman nominated for President of the United States. And in 1877, the 19th U.S. President, Rutherford Hayes, got the first telephone installed in the White House. And 1893, the Imperial College of London was established. And 1901, Sir Jagdish Chandra Bose, Indian scientist, in the Hall of the Royal Society, London, which is packed with eminent scientists, this day on May 10, 1901, proved that plants and animals have similar touch sense. 1924, this day, J. Edgar Hoover began his legacy with the FBI, starting a 48-year span of undertakings, reforms and changes which ultimately changed the criminal justice scenario in the United States of America. He became the first acting director of the Bureau of Investigation, later renamed the Federal Bureau of Investigation, FBI.
1994 में आज के दिन दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। 1999 में पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड अब्राहम का निधन हुआ था।
1964, a new study was linked smoking to an increase in heart attack for the first time. The study shows that blood clots faster after smoking. The findings were announced by the American Cancer Society. And in 1969, this day, Apollo 10 transmitted the first color picture of Earth from space. And 1975, the first home video cassette recorder, the Betamax, began sales in Japan. The format made by Sony used one-hour tapes, but a competing system was introduced by JVC the following year called VHS, that's Video Home System, capable of the two-hour recording.
और अब हम आ गए हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज ही के दिन पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। और आगाज कर रही हूं सुभद्रा एक ऐसे नाम के साथ जो बहुत बड़ा नाम है भारतवासियों के लिए, खासतौर पर एक शेर अर्ज कर रही हूं उन्हीं का लिखा हुआ। हमारे श्रोता सुनते के साथ ही समझ जाएंगे। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। और समझ गए होंगे हमारी श्रोता मैं बात कर रही हूँ कैफी आजमी की।
यस ऑफ कोर्स,
आज उनकी पुण्यतिथि है। फिल्म जगत के मशहूर लिरिसिस्ट होने के साथ साथ मशहूर मकबूल उर्दू शायर भी थे। उनका जो असली नाम था वह अख्तर हुसैन रिजवी था। उनमें नैसर्गिक काव्य प्रतिभा थी और बहुत ही छोटी उम्र से ही उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उनका जन्म हुआ था और उसी आजमगढ़ के होने की वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ आजमी लगा लिया था। उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा पाई और उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। उनकी जो शुरू की जो रचनाएं थी, शुरू की जो शायरी थी सुभद्रा, वो यकीनन लव पोएट्री जिसको कहते हैं, प्रेम भावना से प्रधान थी, लेकिन जल्द ही उसमें प्रगतिशील विचारों का प्राधान्य हो गया था। और इप्टा से जब उनका संबंध बना तो आगे चल के वो उसके अध्यक्ष भी बने। फिल्म बुजदिल की अगर हम फिल्मों की बात करें तो 1951 की फिल्म बुजदिल में उन्होंने पहली बार गीत लिखा था रोते रोते बदल गई रात। फिर उसके बाद गर्म हवा फिल्म की कहानी, पटकथा, संवाद सब कैफी आजमी ने लिखे थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह थी कि गर्म हवा पर कैफी आजमी ने तीन फिल्म फेयर अवार्ड और पटकथा संवाद और बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किया था। उनको पहला बड़ा ब्रेक मिला 1959 की फिल्म कागज के फूल से। और हीर राजा का जिक्र मैं यहां जरूर करूंगी, 1970 की ये वो फिल्म है जिसने हिंदी फिल्मों में एक इतिहास कायम कर दिया। उन्होंने पूरी फिल्म शायरी में लिखी थी, उसका एक एक डायलॉग शायरी में है, ऐसा हिंदी फिल्मों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो उसी फिल्म का एक डायलॉग सुनते हैं।
अब मुकद्दर से नहीं कोई गिला, मैं गवाला बन गया, अच्छा हुआ। रहने दो,
क्यों?
तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यार।
प्यार तो लस्सी पियो, लस्सी भी है।
तुझ में भोलापन भी है, शौकी भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से। तूने सब पाया है, आशिक की नजर पाई नहीं। जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं तुझको।
बहुत ही
यस ब्यूटीफुल इट इज। एंड ऑफ कोर्स यू नो देयर इज अ स्ट्रीट, यू नो इट्स कॉल्ड कैफी आजमी बाग, यू नो वेयर इट इज, आउटसाइड माय हाउस।
अरे वाह,
यस,
क्या बात है। फिर तो आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही होंगी।
ऑफ कोर्स, राइट आउटसाइड। एंड फ्रेंड्स, 2012 दिस डे विदाल ससून, अ पायनियर इन द हेयर ड्रेसिंग फील्ड, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84 इन लॉस एंजेलिस। Sassoon was known for creating short geometric haircuts and is the creator of the popular bob style cut. Sassoon hosted a list of celebrity clients and many of his cuts were shown off by the biggest fashionistas of the 1960s. And also two legendary actresses from the US, Joan Crawford and Susan Oliver, passed away this day. Crawford won an Academy Award for Best Actress for her role in movie Mildred Pierce, while Susan Oliver actress and director, best remembered for her role as Anne Howard in the movie The Jean Krupa Story.
आज ही पुण्यतिथि है छत्रपति साहू महाराज की, जो भारत में प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और हमेशा उनसे निकटता बनाए रखी। साहू महाराज ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्य शोधक समाज फुले द्वारा जो गठित संस्था थी उसके संरक्षक भी रहे। उनका निधन आज के दिन 10 मई 1922 को मुंबई में हुआ। और आज ही पुण्यतिथि है मैकमोहन की, जो हिंदी सिनेमा के बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं। और सारी बातें छोड़ दें, अगर हम फिल्मों की बात करें और कहें सांबा, तो एकदम याद आता है मैकमोहन। तो मैकमोहन की आवाज में फिल्म शोले का यानी कि सांबा की ही आवाज में एक डायलॉग सुनते हैं।
कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। खाली हाँ, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
सुना? पूरे 50,000।
ये बस एक पूरे 50,000 ही अपने आप में काफी है।
यस ऑफ कोर्स। इन 1899 लेजेंडरी अमेरिकन डांसर एक्टर फ्रेड एस्टेट टुक बर्थ दिस डे इन ओमाहा नेब्रास्का, बेस्ट नोन फॉर अ नंबर ऑफ हाईली सक्सेसफुल म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म्स। And in 2010, friends, iconic American singer Lena Horne passed away at the age of 92. Horne, of course, is a prominent player during civil rights era, actively fought against racial discrimination during a singing and acting career, which lasted over 60 years.
Got rhythm. I got music. I got my man. Who could ask for anything?
Happy birthday to a legend, Irish musician, human rights activist Bono, the lead singer of the popular rock band U2. And of course, Bono's real name is Paul David Hewson, shortened his name from Bono Vox, that's the Latin for good voice, to simply Bono, fronts the band U2. Happy birthday to him. Here goes.
In the chilly hours, thorn twist in your side, I'll wait for you. Slide of hand.
और आज ये पुण्यतिथि है शिव कुमार शर्मा की, जो भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन भी किए थे। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से, जिनमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म विभूषण शामिल है, उनको नवाजा गया।
And friends, a legendary songwriter, guitarist from Scotland, Donovan celebrates his birthday today. At the age of 19, he released a super album called Sunshine Superman that introduced psychedelia, combined with her own raga rock, with folk lyrics, an array of instruments with sitar dominating and marching along with guitar lines. Happy birthday, Donovan. Here goes.
Of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine.
आज जयंती है पंकज मलिक की, जो बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ रहे। उनका पूरा नाम पंकज कुमार मलिक था और उनकी आवाज का जादू आज भी लाखों प्रशंसकों के सर चढ़कर बोलता है।
मुझे इतना बता दे ऐ कातिब तकदीर।
And friends, author, writer Nayanthara Sehgal celebrates her 97th birthday today. She is a member of the Nehru Gandhi family, winner of the 1988 Sahitya Academy Award for English novel Rich Like Us in 1985.
Aaj hi jayanti hoti hai Grenadier Yogendra Singh Yadav ki, jinhe Param Veer Chakra se sammanit kiya gaya tha. Aur aaj hi jayanti hai Tarachand Bandyopadhyay ki, jo Bharatiya filmon ke nirmata rahe. 1960 ke dashak mein unhone kai filmon ka nirman kiya. Unki filmein parivarik hua karti thi aur unme se ek film Bagheet. ये सुनते हैं
प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है मैं एक राजा हूँ
ये कहानियां रोज चलती रहेंगी हर रोज आज सवेरे आप इसी तरह सुनते रहिएगा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप ही का अपना कार्यक्रम आज सवेरे वक्त हो गया है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का इजाजत दीजिए नईम अख्तर और सुभद्रा रामचंद्रन को
यस थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट डे
नमस्कार।